समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ आज मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। तमाम विविधताओं से सजे भारत देश में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की संकल्पना सच करने के लिए वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लाई जा रही है। अनेक वस्तुओं और सेवाओं की दरें तय हो गई हैं। ठीक चार दिन बाद 30 मई की आधी रात देश की अर्थव्यवस्था फिर नियति से बाजी लगाएगी। अप्रत्यक्ष करों की दिशा में होने जा रहे इस ऐतिहासिक बदलाव के मुद्दे को पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हम पहले भी कई बार उठा चुके हैं ताकि आप इनकी बारीकियां जान सकें। आज भी हम जीएसटी और इसके फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईएसई के आयुक्त संजीव श्रीवास्तव और सीए विनोद जैन आर्थिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, अब आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। नंबर है 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर भी है हमारा 1800-11-5767। इस पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा। तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछती हूँ श्रीवास्तव जी, क्योंकि गिनती के दिन बचे हैं जीएसटी लागू होने में, तो अब भी लोगों में जिज्ञासाएं भी हैं, उत्साह भी है, तो आप संक्षिप्त में बताएंगे कि ये जो व्यवस्था है वो किस तरह से काम करेगी?
ये जो नई कर की व्यवस्था लेके आ रहे हैं ये एक बदलाव है और इस व्यवस्था में पूरा राष्ट्र एक साथ में बांधा जा रहा है, जिसमें कि एक कर एक देश एक मार्केट के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। आप एक कर के माध्यम से एक टैक्स रेट पे कोई भी गुड हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने पे खरीद सकते हैं। इस व्यवस्था में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल कंप्लीट कंप्लायंस आप इंश्योर कर सकते हैं एंड आप अपने व्यापारी से हर एक से सबसे बड़ी चीज है बिल मांग सकते हैं। बिल जो कि आपको स्पष्ट रूप में दर्शाएगा कि उस पर कितना कर पे किया गया है और इस व्यवस्था के हिसाब से आपको एक बहुत बड़े टूल मिलता है जिसमें कि क्रेडिट चेन से सारा का सारा कर उस एंड तक के आता है। आप अगर आगे व्यापार करते हैं तो आप उसको क्रेडिट को लेके अपना व्यापार आगे ले जा सकते हैं। तो इससे टैक्स का जो बर्डन है आम नागरिक पे या उपभोक्ता पे वो कम होगा।
तो 30 जून की आधी रात को ये जो व्यवस्था है वो फिर से एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं ये एक और पूछना चाहती हूँ कि लोगों में इसको लेकर चिंताएं भी हैं, जिज्ञासा है तो चिंताएं भी हैं, तो विनोद जैन जी आप इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, हम लोग जो भी व्यापारी वर्ग है जिसे इसे सही मायने में इम्प्लीमेंट करना है, जिन्हें यूज करना है वो तो हर कंज्यूमर को करना है, लेकिन जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है वो कर व्यापारी करे, चाहे वो उत्पादक है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो बड़ा व्यापारी है, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज है, सबको इसे इम्प्लीमेंट करना है। लगभग हर आदमी को ये टच करने वाला है, शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी बचेगा जिसपे जीएसटी का असर नहीं होगा, चाहे वो आप उपभोक्ता हैं चाहे आप चीज सप्लाई करने वाले। अब सप्लायर वाली बात हो रही, जो भी आपको माल देता है वो भी इफेक्टेड है, जो माल ले रहा है वो भी इफेक्टेड है। इसमें देखिए बहुत सारी चिंताएं लोगों के मन में है क्योंकि नया कानून है, नई व्यवस्था है, लोगों को एक तरीके से ऐसा महसूस ये हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा।
क्या महसूस हो रहा है पहले श्रोताओं को वो जानते हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे पहले श्रोता हैं रुपेश कुमार जी। रुपेश जी, अपना सवाल पूछें।
जी मैडम जी।
जी
मैडम जी, मैं गोल्ड स्मिथ हूँ।
हाँ जी,
सोने चांदी का कारोबार है ना जी, जैसे अपना।
हाँ जी हाँ जी।
जैसे गवर्नमेंट ने मैडम जी पैमाना निर्धारित किया है कि सालाना ट्रांजैक्शन जिस व्यापारी की 10 लाख से नीचे है उसको मतलब एंटर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है
जी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 10 लाख का
10 लाख ने 20 लाख है, 20 लाख की लिमिट है और 10 लाख की लिमिट सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में आसाम वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उसमें 10 लाख की है, 20 लाख की लिमिट है। तो 20 लाख तक की जैसे आप गोल्ड स्मिथ है तो आप तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी बात से आप एक जॉब वर्कर हैं। अगर आप एक जॉब वर्कर हैं गोल्ड लेकर उसको बनाकर वापस सुनार को उसको देते हैं जो ज्वेलर है तो आपको 20 लाख से नीचे नीचे अगर आपकी जो सेवाएं हैं पूरे साल में जो देते हैं अगर उससे नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
जी दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, संजय जी सवाल पूछें अपना।
हाँ मेरे दो तीन प्रश्न, पहला तो ये है कि इस जीएसटी प्रणाली से आम जनता और सरकार दोनों को क्या लाभ होंगे, दूसरा क्या है कि जीएसटी प्रणाली आने से क्या ये वाला इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और तीसरा क्या है कि इसमें जो इतने सारे जो कंप्लायंस वगैरह जो इसको करना है तो क्या उससे व्यापारियों की कंप्लायंस पास नहीं पता बढ़ेगी।
जी हाँ, सबसे पहले तो आम जनता का यही सवाल है कि उन पर तो कोई बोझ नहीं आएगा।
जैसा मैंने पहले बताया कुल मिला के अगर पूरा क्रेडिट पास ऑन होता है तो आम उपभोक्ता पे कोई ज्यादा बोझ नहीं आएगा। ये माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद में कुल मिला के उपभोक्ता के ऊपर टोटल टैक्स जो लगेगा, टोटल कर जो लगेगा वो कम आ जाएगा, प्राइसेस कम होने चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में जब तक के हम टैक्स किसी भी नई चीज को लागू करते हैं तो लोगों को ये रहता है कि शायद कीमतें बढ़ेंगी, ये होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें स्टेबलाइज होंगी आप पाएंगे कि चीजों के दाम घटने चाहिए। दूसरा जब दाम घटेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन कम होता है, दूसरी चीज ये हो जाएगी, अवेलेबिलिटी चीजों की बढ़ती जाएगी, वो भी आपकी महंगाई को कंट्रोल करेगा। तीसरी चीज है इसमें कुछ कंप्लायंस है, लेकिन कंप्लायंस को करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स दिए जा रहे हैं जिसको कि आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे टीआरपीज या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर और इस तरह की स्कीम्स दी जा रही हैं जिनके माध्यम से आप बहुत आसानी से कंप्लायंस कर सकते हैं। कोई भी नई व्यवस्था लागू होने पर इनिशियली लोगों को ये लगता है कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन आगे चल के आप उसको जब यूज टू हो जाते हैं तो वो घटने लगती है।
बिल्कुल सरकार
तो मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगा विनोद जैन, क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग से बिल्कुल जो साथ में जुड़े हैं तो जो भी व्यापारी देखिए उसको कंप्यूटर को जानना चलाना तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसके लिए तकलीफ है, नहीं तो नॉर्मली जो भी कंप्लायंसेज है वो सब कंप्यूटर से आराम से हो जाएंगी। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कंप्यूटर पर रखते हैं, जो सेल बिल रेज करते हैं उसको भी अगर कंप्यूटर से रेज करते हैं और परचेज बिल जितने हैं उसमें एंटर करते हैं तो जो टैली जैसे या ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन है, नए सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है, नए सॉफ्टवेयर नहीं, एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने सबने अपने आप में बदलाव किया है कि वो जो भी आपकी डे टू डे अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप उसे सरकार के जो रिटर्न का फॉर्म है उसमें ले जा सकते हैं।
तो ये पूरी तरह से एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले अपने एक श्रोता को ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश से है देव नारायण जी, सोनभद्र से अपना सवाल पूछें। देव नारायण जी आप आवाज सुन पा रहे हैं?
जी सर सुन पा रहे हैं, नमस्कार
जी, सवाल पूछें।
जैसे ये जीएसटी कर जो लागू किया जा रहा है, जैसे नशा जैसे गुटखा हुआ, पान, खैनी, सुरती, इससे कर बढ़ा करके और जो दिनचर्या लोगों के प्रयोग की जो वस्तुएं है उस पर कम किया जाए।
ऑलरेडी व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो ज्यादा ऐसी तंबाकू या ऐसी चीजें उनमें टैक्स ज्यादा लगाया गया है, 28% हाईएस्ट रेट टैक्स है, उससे भी ज्यादा लगाया है और एडिशनल सरचार्ज लगाया सब चीजों पे, किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 20% और ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्करेज करने का। इसी तरह जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें जैसे फूड है, जैसे आप समझिए दालें हैं, आटा है, चना है, इन सब में आप समझिए जीरो टैक्स है, किसी प्रकार का कोई जीएसटी का टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ब्रांडेड चीजों पर जरूर टैक्स लगेगा, मान लिया ब्रांडेड आटा खरीदते हैं तो उस पर भी मामूली सा सिर्फ 5% का कर रखा गया। तो उस हिसाब से सरकार ने सारी व्यवस्था ये देख कर की गई है कि जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं उनमें कम से कम टैक्स लगाया जाए, और जो विलासकारी वस्तु हैं जैसे 5-स्टार होटल पर 28% टैक्स है, विलास और आम रेस्टोरेंट पे 5% टैक्स है, तो उस हिसाब से 5% और 28% आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर सरकार ने किया है।
लेकिन एक जो आम उपभोक्ता है वो कैसे श्योर होगा, जब उसको कोई सामान खरीदने जाता है किसी दुकान पे, तो वो उसको कैसे श्योरिटी होगी कि उसको जो टैक्स लगा है वो सही तरीके से मिलेगा, क्या उसको कुछ रसीद, पक्की रसीद मिलेगी? क्योंकि छोटी छोटी परचून की दुकानें पे भी हम जाते हैं, हमारा संपर्क उनसे ज्यादा रहता है।
देखिए 200 रुपये से नीचे इनवॉयस इशू करना जरूरी नहीं, लेकिन 200 रुपये से ऊपर की जो भी आप माल बेचेंगे उसमें इनवॉइस इशू करना इस व्यवस्था में जरूरी है। 200 रुपये से ऊपर से जो भी चीज आप खरीदेंगे, अगर आप एक अपने व्यापार में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना जीएसटी नंबर, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है कोट करेंगे, उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप उपभोक्ता हैं, आम उपभोक्ता हैं, तो आपको उसकी पक्की रसीद मिलेगी।
मुंबई से एक श्रोता है हमारे भुवनेश दवे जी, भुवनेश जी अपना सवाल पूछे।
नमस्कार मैडम।
नमस्कार
मैडम, हमारे विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार। मेरा सवाल एक है कि अभी जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसपे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज आता है, तो लोकल बॉडी टैक्स और वेट वगैरह सब हट जाएंगे और उसके स्थान पर सिर्फ जीएसटी रह जाएगा, तो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी उत्पाद की कीमत पूरे भारतवर्ष में एक समान एक ही रहेगी या अलग अलग राज्यों में उसके बाद भी उसके लिए अलग अलग कीमत?
पूरे देश में जो ये कर लागू किया जा रहा है, कर की वजह से किसी प्राइस में डिफरेंस नहीं होगा। सारे देश में, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप जाएंगे, टैक्स रेट सब प्रोडक्ट पे सेम होगा, तो कीमतें करीब करीब सब जगह पे बराबर हो जाएंगी।
क्योंकि ऐसा कई जगह भ्रम है ना कि एसजीएसटी अलग लगेगा, आईजीएसटी कहीं को लग रहा है अलग ना लगे, सीजीएसटी अलग ना लगे,
ये टैक्स एक लगेगा। एक अगर आप विद इन द स्टेट काम करते हैं तो आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना है, और अगर नहीं है इंटर स्टेट करते हैं तो आईजीएसटी पे करते हैं। आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी के बराबर है।
इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए नॉर्मली तो टैक्स से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मान लिया आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई काम बना रहे हैं और तमिलनाडु में बेचते हैं, तो जाने आने का खर्चा मिला के हो सकता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो कुछ थोड़ा बढ़ाकर रखें। हालांकि ऐसी स्थिति होने की संभावना कम है, जो सप्लायर एब्जॉर्ब करेंगे पूरे देश में। अभी हम देखते हैं आज चीजों पर छपा होता है एमआरपी इन दिल्ली इतना, एमआरपी आउटसाइड दिल्ली इतना, तो वो शायद इसीलिए क्योंकि इंक्लूसिव टैक्स होता है इसलिए फर्क है, लेकिन ज्यादातर चीजों में लगभग रेट एक सा आ जाएगा। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जैसे मान लिया स्टील गुड्स हैं, स्टील मैन्युफैक्चर्ड आपने किया और 2000 किलोमीटर दूर भेजा, तो नेचुरली उस पर फिर टैक्स के अलावा और भी लॉजिस्टिक की कॉस्ट लग जाती है।
बिल्कुल। और दिल्ली से एक और श्रोता है हमारे रवि राज जी। रवि जी सवाल पूछें।
नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
यस, मेरा सवाल यह है मैडम जी, छोटे उद्योगों के लिए, इट मीन्स जिनका उद्योग 10 लाख से नीचे के हैं, उनके लिए जीएसटी लागू होने के बाद कितने कितने समय अंतराल बाद और कैसे कैसे एटीआर जमा करना पड़ेगा?
नहीं, अगर आप 20 लाख से नीचे हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 20 लाख तक के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ना ही कोई रिटर्न फाइल करना है।
सिर्फ अगर आप इनकम टैक्स है, जैसे आपने आईटीआर पूछा, इनकम टैक्स की रिटर्न तो आपकी जाएगी, अगर आपकी इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो जाएगी। और उसमें भी देखिए सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, 44ADA है, उसमें आप अगर 2 करोड़ तक की इनकम आपकी सेल है तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल का अकाउंट रखिए, परचेज का अकाउंट रखिए और जीएसटी की रिटर्न फाइल करिए।
20 लाख से अगर आपका सालाना कारोबार है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आपको कोई
जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है उसमें, अगर आप इंटर स्टेट बेचते हैं, अगर दिल्ली में बैठ के आप हरियाणा में बेचते हैं, दिल्ली में बैठ के आप महाराष्ट्र में बेचते हैं, तो जीरो से ही शुरू हो जाएगा, पहली सेल पर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा।
दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, श्याम किशोर जी। जी श्याम, अपना सवाल पूछें।
हेलो।
हाँ जी।
हाँ जी मैम, नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ और मैं जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि हम लोग के लिए भी थोड़ी सुविधाएं हों जीएसटी में, और हमें दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे सामान हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, और आपने कहा कि आयातित चीजों पर शुल्क लगेगा, और हिंदुस्तान में ऐसी चीजें बनाई नहीं जाती सही तरीके की, क्वालिटी वाइज यहाँ की चीजें पुअर होती हैं, तो उसमें आपने जीएसटी लगा रखा है, और देखिए रेल किताबें हमारी हैं और फोल्डिंग छड़ी है जो लोहे का बनता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको तो आपको जीएसटी मुक्त करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जो कोई खास अर्निंग नहीं होती।
बिल्कुल बिल्कुल जी, समझ गए आपका सवाल। तो आयातित वस्तुओं पर जीएसटी किस तरह प्रभावित करेगा, क्योंकि कई बार क्या डोमेस्टिक हमारी मार्केट प्रभावित होगी इससे?
नहीं, डोमेस्टिक मार्केट नहीं, अभी भी आयातित जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर में काउंटरवेलिंग ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगती है। अब कुछ नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की जगह पे अब उसकी जगह पे, क्योंकि वो खत्म हो जाती है, आईजीएसटी लगेगा।
उसमें सिर्फ इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल किताबें हैं या फिर इनकी छड़ी है, ऐसी सभी चीजों को कर से मुक्त रखा गया है, चाहे वो लोकल बेचेंगे या फिर इम्पोर्ट करेंगे। ना इम्पोर्ट करते समय कोई टैक्स लगेगा, ना ही आपको, आप समझिए, लोकल बेचने में कोई टैक्स लगेगा, उनको वैसे ही कर से मुक्त रखा गया।
जी, मुंबई से एक श्रोता है शैलेश गांधी। शैलेश जी, आपका सवाल।
हेलो, मैं शैलेश गांधी बोलता हूँ बॉम्बे से। मेरा सवाल से ज्यादा तो एक सजेशन क्लियर है कि जीएसटी से क्या एडवांटेज होगा। जीएसटी में हम जो आज के वेट के सिस्टम में जब 3 साल के बाद आपको नोटिस आती है 4 कि भाई आपका सी फॉर्म लेकर के आइए, या आपके परचेस के अंदर पार्टी ने शो नहीं किया, इसके लिए आप उसकी टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, ये जीएसटी में 3 महीने के अंदर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज इतने प्रोप्राइटरशिप चलते हैं जिसकी एज राउंड अबाउट 60-65 हो जाती है, वो समझो कि बीमार हो गए या एक्सपायर भी हो गए या व्हाट्सो एवर, तो उनके फैमिली मेंबर को आप 4 साल के बाद नोटिस आती है, वो फैमिली मेंबर उसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते और उसके लिए इंस्पेक्टर राज जमा हो जाता है और उसको करप्शन करके सोल्यूशन निकालना पड़ता है।
ये बड़ा अच्छा कहा आपने कि टाइम पर ही आपकी सुविधाएं हो जाएंगी। फॉर्म का तो झमेला ही खत्म हो गया, ना सी फॉर्म है, ना एफ फॉर्म है, ना ई फॉर्म है, किसी तरह का कोई फॉर्म लेना देना नहीं है आपको, तो सिर्फ परचेज इनवॉइस चाहिए जिसके बेस पर आपको क्रेडिट मिलेगा, और सेम उसी महीने अदर पता आपको लग जाएगा कि सामने वाले ने टैक्स जमा कराया या नहीं कराया, अपने रिटर्न फाइल किया नहीं की, तो आपको बहुत देर तक दूरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
और खासकर जब हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सारी ऑनलाइन व्यवस्था होगी, डिजिटल साक्षरता की जो स्थिति है फिलहाल हमारे देश में, तो उसमें क्या लगता है किस तरह से उपाय किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो?
ये जो बिल्कुल उपाय जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। एक कोई भी व्यापारी सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखता है? अपने सेल का। और अगर वो हमको अपने सेल बताता है तो वो किसी ना किसी के परचेज हैं। तो अगर सारे सेल सारे व्यापारी बता देंगे तो उसका परचेज अपने आप पता चल जाता है। तो इस व्यवस्था में बिल्कुल इसी तरीके से ये काम कर रही है कि सब व्यापारियों को बोला जा रहा है कि आप अपने सेल बताइए, फिर दूसरा आदमी खाली ये देखता है कि उसने जो जो खरीदा था वो सिस्टम के ऊपर में आ गया है कि नहीं आया है, और अगर कुछ मिस होता है तो वो उसमें जोड़ सकता है। इस व्यवस्था में बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ में आप अपना सेल और परचेज अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं।
बिल्कुल पारदर्शिता आएगी जिस लिहाज से ये ऑनलाइन व्यवस्था है,
और ये आपको एकदम एक अगले महीने पूरा कुछ सेटल हो जाता है।
देखिए, एक बहुत बड़ा फायदा जो मैं और देख रहा हूँ आपको मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे और तो कंप्लायंस अगर बढ़ जाएगा तो उससे टैक्स के रेट को और फर्दर नीचा करने में सरकार को मदद मिलेगी। ये सरकार असली यही देख रही है कि अभी मान लिया हो सकता है 20-30-40-50-60% लोग ऐसे हों जो आप समझिए बिना पर्चे के बिना बिल के माल बेचते हैं, अगर उनकी संख्या सब्सटेंशियली कम हो जाती है तो टैक्स की दरों को काफी सब्सटेंशियली कम करने में मदद मिलेगी, आम उपभोक्ता का बहुत फायदा होगा।
तो आम नागरिकों को अल्टीमेटली इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हमारे श्रोता है सागर मलिक। सागर जी, आपका सवाल क्या है?
नमस्कार मैम।
नमस्कार
मैम, ये मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं ना कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए।
हाँ भाई साहब बताओ, मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, इसको देखिए ऐसे ना, मान लिया आपने कोई माल दिल्ली में से बेचा आपने तमिलनाडु में, तो दिल्ली में आप जो चार्ज करेंगे आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट वाला जो टैक्स है वो आप चार्ज करेंगे, और वहां पर जो तमिलनाडु का जो इम्पोर्टर है वो आईजीएसटी पे करेगा, उसको जो वहां लोकल सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है अपना माल बेचते समय उसमें इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी, और केंद्रीय सरकार ने जो जीएसटी इनका नेटवर्क बनाया है उसमें ऑटोमेटिकली वो जो आईजीएसटी दिल्ली वाले ने चार्ज किया है वो तमिलनाडु को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वो टैक्स चार्ज दिल्ली वाला करेगा लेकिन उसका क्रेडिट तमिलनाडु सरकार को मिल जाएगा,
वो अपने आप ही सरकारों के बीच में हो जाएगा।
सरकारों के बीच में लेन देन होगा, इससे आम उपभोक्ता को कुछ लेना देना नहीं। नेटवर्क ऐसा बढ़िया बनाया है कि जहां पर भी कंजम्पशन होगी, अल्टीमेट कंजम्पशन होगी, टैक्स वहीं पहुंच जाएगा
और इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा और आम उपभोक्ता पर कोई भार नहीं पड़ेगा।
भार नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली सीमलेस क्रेडिट है।
जो टैक्स का जो है जिसमें जीएसटी है या कोई भी ऐसा क्रेडिट चेन वाला सिस्टम होता है वो तभी सुचारू रूप से काम करेगा जब क्रेडिट का फ्लो सीमलेसली होता है।
दिल्ली से एक श्रोता है रवि लाल गुप्ता जी। रवि जी, आपका सवाल क्या है?
हेलो
रवि जी, आपका सवाल क्या है, पूछें।
यस प्रियंका मैडम, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
यस मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ इसमें बहुत से जो बड़े लोग हैं और जो लीडर्स वगैरह हैं उनके पैसे नहीं पकड़ में आए, ब्लैक मनी नहीं पकड़ में आया, तो उनका पैसा दरअसल वो लैंड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में उन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसको लैंड को, प्रॉपर्टी को जीएसटी में क्यों नहीं ऐड किया गया? कई बार इन्होंने बैठक की लेकिन इसमें ऐड नहीं किए, इसमें इंक्लूड नहीं किए।
रियल एस्टेट को लेकर भी काफी जीएसटी में उठाया गया है, मतलब जोर शोर से इसको लेकर भी, क्योंकि अगर कुछ अगर वो नहीं करते हैं, खरीदारों की अगर बात की जाए, हालांकि ये थोड़ा मुद्दे से थोड़ा सा
हट गया, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा इसमें। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट का सब्जेक्ट है और सारी स्टेट्स की ऐसी कंसेंसस बनी कि स्टैम्प ड्यूटी को अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी अगर स्टेट्स ने लगाना ही है, मतलब प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, कहीं पर 4% है, कहीं 6% है, कोई 14% भी लेता है, हर एक स्टेट में वो स्टेट अपने हिसाब से बदलाव उसको नहीं करना चाहती थी, तो पूरे देश में कंसेंसस किया गया। देखिए, कुछ चीजें छोड़ गई, जैसे स्टैम्प ड्यूटी छोड़ दिया, उसी तरह पेट्रोल डीजल वगैरह को छोड़ देगा फिलहाल, और इसी तरह लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये सारी ऐसी चीजें जिसमें कंसेंसस बनने में व्यवधान था, तो इसीलिए उनको बाहर रख दिया गया, किसी न किसी वजह से बाहर रखा गया। इसमें देश का कोई नुकसान नहीं। देखिए, जहां तक आपने बताया कि हाँ भी लोगों ने अपने पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इससे नहीं पकड़ा जाएगा, तो उसके लिए नई व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आधार से सारी प्रॉपर्टीज को लिंक किया जा रहा है, आधार से पैन को लिंक किया जा रहा है, तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज आपके इनकम टैक्स के परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक हो जाएंगी और सरकार ये देख सकेगी आराम से कि हाँ भी ये आदमी टैक्स तो सिर्फ 2 लाख रुपए की इनकम पर देता है और 2 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति है, तो आराम से सरकार की पकड़ में आएगा, ये आदमी गड़बड़ है उसको पकड़ा जा सके,
पारदर्शिता आ सकेगी। मध्य प्रदेश से राजा साहू है, राजा जी आपका सवाल क्या है?
जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ ये जो जीएसटी है ये हमारे संविधान की सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार की सूची में, राज्य सरकार की सूची है, समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आएगा?
ये जो है दोनों सूची में आ रहा है, क्योंकि अब ये जो टैक्स है पहले राष्ट्र केंद्र सरकार की सूची में जो सेंट्रल एक्साइज था और ये जो था, ये दोनों निकल गए हैं राष्ट्र सरकार की सूची में और दोनों में से अब 269 के अंदर में इन टैक्सेस की व्यवस्था की गई है और दोनों को अधिकार है ये टैक्स लेवी करने का और कलेक्ट करने का।
इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, एक नया जीएसटी काउंसिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया। इस जीएसटी काउंसिल में केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं। केंद्र की वोटें हैं 40% और राज्यों की वोटें हैं 60%, और जब तक 75% वोट इकट्ठा नहीं होते जब तक इस पे बदलाव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो टैक्स के रेट है हर एक स्टेट अपने हिसाब से बदल नहीं सकती है, लेकिन सबकी बात इसमें वॉयस में सम्मिलित है। और एक बात बहुत अच्छी हुई है हमारे देश में कि जितने भी फैसले हुए हैं जीएसटी काउंसिल में सब सर्वसम्मति से हुए हैं, कहीं पर ऐसी वोटिंग की व्यवस्था ही नहीं आई। तो चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे लेफ्ट की सरकार है,
तो
सब सरकारों ने एक मत से फैसला किया है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया।
और जीएसटी में जो सर्विस सेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना गया, लेकिन जैसे एक सवाल आया हमारा ट्विटर पर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है कि एक अमित कुमार सिंह है, उन्होंने पूछा है कि रिन्यूइंग माय कार इंश्योरेंस पॉलिसी शैल आई डू बिफोर और आफ्टर जीएसटी कम्स इन इफेक्ट, द एजेंट सेज डू प्रायर टू जीएसटी, मतलब इज ही करेक्ट पहले करें या बाद में करें, क्योंकि अब भी असमंजस की स्थिति है लोगों में इसको लेकर कि क्या करना चाहिए।
कार की इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलता नहीं, ना पहले मिलता था ना अब मिलेगा, इसलिए कार कभी इंश्योरेंस कभी भी आप कराएं रिन्यू कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये टैक्स का चेंज है, सिस्टम का चेंज नहीं है, इसलिए आप ये जो सोचते हैं कि हम 30 तारीख के पहले सब चीजें कर दें, ये खाली ये आपके ऊपर में एक भ्रम है। आपको कोई ऐसा इस पूरी व्यवस्था के बदलाव के बाद में लॉस नहीं होगा कि बहुत बड़ा आप उसमें चीज को नुकसान।
जी, जैसा अभी
आपने देखा ना, भगदड़ मच गई है, जो भी आम व्यापारी हैं वो कह रहे हैं टेलीविजन भी और अपना कंप्यूटर भी सब चीज किसी तरह बेच दो, मेरे स्टॉक में ना रहे।
वही चीज पूछ रही हूँ कि उनमें इसको लेकर भी संशय है कि हमारे स्टॉक का क्या होगा जीएसटी लागू होने के बाद।
स्टॉक का पूरा क्रेडिट अगर आप प्रॉपरली अकाउंट फॉर करते हैं तो मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब आप उस व्यवस्था को देखेंगे कि खाली ये कि अगर आपने पहले से ही अपने रिटर्न नहीं फाइल करते थे या वो सामान जो था आपके पास में बिना अनअकाउंटेड था तो आपको लॉस है। अगर आपका सामान अकाउंटेड फॉर था, आपके पास में उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसका रिटर्न फाइल करते रहे, पिछले 6 महीने में आपने रिटर्न फाइल किए हुए हैं, तो आपको किसी चीज के नुकसान नहीं होगा।
अगर आपके काम में ट्रांसपेरेंसी है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
इसमें एक और बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपकी, जितना भी आपने वैल्यू एडेड टैक्स दे रखा है जो वैट जो सेल टैक्स की जगह आया था या जो भी आपकी एक्साइज ड्यूटी उसमें इनबिल्ट है उसका दोनों का क्रेडिट, हालांकि चाहे एक्साइज ड्यूटी आपके बिल पर चार्ज भी नहीं है तो उसका क्रेडिट भी सरकार 40% या 60% उसका दे रही है आपके सेल प्राइस का, तो उस हिसाब से देखते हुए किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये जो भगदड़ है कई बार नासमझी की वजह से ज्यादा है,
तो वही जागरूकता लाने की भी जरूरत है।
अब वो तो जागरूकता के लिए तो 3-4 दिन बचे हैं, मेरे को लगता है जिसने जो करना था कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सरकार ने बड़ा सिस्टम से सबको ध्यान में रखते हुए किसी के साथ नाइंसाफी ना हो इसका पूरा प्रयास किया।
हमारे जागरूक श्रोता का क्या प्रश्न अगला, दिल्ली से है मनमोहन जी। मनमोहन जी सवाल पूछे अपना।
नमस्कार, अभी विश्लेषक एक बता रहे थे कि ये सिस्टम का चेंज है, टैक्स का चेंज नहीं है।
जी,
मेरा ये मानना है कि ये टैक्स के चेंज के साथ में सिस्टम भी चेंज होता ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इसमें टैक्स कंप्लायंस डीलर्स थे वो और जुड़ते। क्या ये डीलर्स को जोड़ना हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है?
बिल्कुल है, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सारे डीलर्स, सारे ट्रेडर्स, सब कोई आम उपभोक्ता तक के हमारे टैक्स सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, ये हमारे को मतलब कि हमारे लिए एक कर्तव्य है कि सब लोग इसमें जुड़ें। इसी वजह से आप देखेंगे कि सरकार हर एक के पास जाके हमारे लोग जाके लोगों को समझा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं देश भर में कि लोगों के बीच में जागरूकता है कि आप जो ये टैक्स पे करना है कैसे करना है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा इन सबको जोड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, ये खाली एक चेंज नहीं है, ये सबको इंक्लूड करना है।
मैं इसमें एक बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात पूछी है इन्होंने। देखिए, जिस तरह की कानून व्यवस्था बनी है उस हिसाब से जो लोग अनरजिस्टर्ड रह जाएंगे वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, उनको नुकसान होगा क्योंकि उन्हें इनपुट क्रेडिट का नुकसान हो जाएगा। तो सीमलेस क्रेडिट की जो व्यवस्था है उसमें अगर मैं मान लिया एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैं आपसे मान लिया माल खरीदता हूं और आप अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, तो टैक्स तो मेरे को मेरी परचेज पर देना ही देना है। और आपने जो चीजें खरीदी थी उन पर जो आपने टैक्स दिया था उसका क्रेडिट आपको मिल नहीं रहा है, तो आपकी बनिस्पत मैं ऐसे आदमी से खरीदना चाहूंगा जो रजिस्टर्ड होगा। तो जिसे ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, जिसे आगे बढ़ना है, वो सब रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा गया है, इसीलिए ये व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंज है। और हमें ऐसा लगता है कि देश के ये जो रजिस्टर्ड डीलर हैं कम से कम 5 गुना डेफिनेटली बढ़ जाने वाले हैं।
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है वेद प्रकाश जी हैं गाजियाबाद से, अपना सवाल पूछे वेद जी।
हाँ नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा प्रश्न ये है कि सरकार इस समय में अपना डिजिटल इंडिया का अभियान चलाए हुए है और डिजिटल इंडिया का अभियान बगैर मोबाइल के, बगैर इंटरनेट के, बगैर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या बैंक के नहीं चल सकता, और सरकार ने इसी के ऊपर 12% से बढ़ाकर धीरे धीरे 14-14.5% करते हुए जीएसटी को 18% कर दिया, तो क्या इससे गरीब लोगों को नुकसान नहीं होगा? क्या इससे
जी क्या वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे जो टैक्स रेट जैसे जो बढ़ रहे हैं?
नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं इनकी बात समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं कि 18% कर दिया, अभी 15 से 18 कर दिया फाइनेंशियल सर्विस टैक्स, लेकिन जो पहले इन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलते थे, मान ले जो कैपिटल गुड्स से खरीदते थे उन पे एक्साइज ड्यूटी का और वैट का दोनों बेनिफिट इनको नहीं मिल पाता था, तो जब मान ले कंप्यूटर खरीदते थे कुछ खरीदते थे तो इनकी कॉस्ट कम हो जाने, लेकिन इनकी कॉस्ट बढ़ने नहीं वाली है। तो मेरे को लगता है मान ले पहले 15 रुपये किसी चीज के चार्ज करते थे तो अब उन्हें 12 चार्ज करना चाहिए, तो टैक्स मिला के पहले से कम ही पड़ना चाहिए। सरकार ने उसके लिए एंटी प्रॉफिटरिंग का नियम भी लाई है और ये जरूरी कोशिश की जा रही है कि टैक्स का बोझ आम आदमी के ऊपर बढ़े नहीं किसी तरह से, और वो वास्तव में बढ़ेगा नहीं। ज्यादातर केसेस में जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे लोगों से मिल रहे हैं तो सबका टैक्स का बोझ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है बढ़ने की बजाय, तो इसलिए फायदा जो हो रहा है इनपुट क्रेडिट का वो आम कंज्यूमर तक पहुंचेगा। मेरे को लगता है ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
दिल्ली से एक श्रोता है दिनेश जी। दिनेश जी, आपका सवाल क्या है?
यस मैम, प्रियंका
जी सवाल।
यस मैम, मैम पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम, लेकिन एक बार कभी बेनामी प्रॉपर्टी पर भी इस तरह का पब्लिक स्पीक लेकर के आइए मैम, हम लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं।
बिल्कुल, आपकी जिज्ञासाएं पूरी करेंगे। फिलहाल इस विषय पर आपका कोई सवाल है?
मेरा ये है मैम कि जैसे जो एनजीओज वगैरह हैं दिल्ली में या आउट ऑफ दिल्ली जो कि अलग अलग तरह की संस्थाएं चलाती हैं और एनजीओ के नाम पे जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स उनका 10 लाख का है तो 6 लाख खर्चा करके और 4 लाख रुपए उनका एनुअली बच जाता है, तो ये जो जीएसटी सिस्टम जो आया है क्या इसमें उनको भी पकड़ा जा सकता है? और
देखिए, जीएसटी सिस्टम जो है जो चीजें सर्विसेज और गुड्स के ऊपर में है, एनजीओ के जो अकाउंट्स हैं उनको जो पहले भी देखते थे इनकम टैक्स या वही देखेंगे, लेकिन उनकी जो खरीद और खरीदते हैं सामान या सर्विसेज उनके बारे में जीएसटी कानून पे का इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखिए सिर्फ वो जो एनजीओज हैं जो व्यापारिक तौर पर भी काम करते हैं, जैसे कुछ गुड्स बनाती हैं बेचती हैं, जैसे कुछ पापड़ बनाती हैं, कुछ लज्जत पापड़ वगैरह, उन सब पे जीएसटी पहले जैसे बिल्कुल लगे क्योंकि वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही हैं चाहे एनजीओ हैं। लेकिन जो मान लिया एजुकेशन या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट एनजीओ हैं जो ट्रेड की तरह से कुछ नहीं कर रही है, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट का इशू नहीं है, एनजीओ तो होते ही नॉन प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन सवाल है कि वो कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर रही हैं तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो भी चीजें वो खरीदेंगी तो वो जीएसटी देकर ही खरीदना होगा।
अगला सवाल दिल्ली से ही है, दिल्ली के एक श्रोता है एमपी सिंह। एमपी सिंह जी अपना सवाल कहें।
नमस्कार श्रीवास्तव जी, मिस्टर विनोद जैन जी। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ यूनिफॉर्म्स की, तो हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं जिसपे टैक्स देंगे वो तो 18% पे ले रहे हैं और आगे जो डायरेक्ट कस्टमर को देंगे वो सिर्फ 5% पे जाएगा। हमारा हमेशा इनपुट निकलता रहेगा तो हम सरकार से रिक्वेस्ट ही करते रहेंगे कि हमें वापस करो, वो कहेंगे कि भाई तुम तो पहले इतना टैक्स देते थे हम वापस मांग रहे हैं।
नहीं, आप
दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम जो अपना प्रोडक्ट बेचते थे वो इंक्लूडिंग वैट बेचते थे, जैसे 100 रुपए की चीज थी 95 रुपए हमारी मतलब रिटेल प्राइस होती थी, 5 रुपए हमारा वैट होता था, 100 रुपए बेचते, तो क्या इस बार भी हम जीएसटी ऐड करके अपनी रिटेल प्राइस बना सकते हैं?
बिल्कुल, आपके रिटेल प्राइस हमेशा जीएसटी ऐड करके होगी। जो भी आपकी प्राइस होगी, आपकी एक जैसे 95 रुपए का आप पहले खरीदते माल बेचते थे, उसके बाद में आप टैक्स पे करते थे 5 रुपए, तो 100 रुपए का आप बेच देते थे। अब आप 95 रुपए पे जो जीएसटी कर है वो ऐड करेंगे और वो टोटल प्राइस होगी। दूसरा, कानून में ये व्यवस्था की गई है कि जहां पे आपका इनपुट क्रेडिट ज्यादा है, इनपुट क्रेडिट ज्यादा हो जाता है जो कि आपको टैक्स पे करना है, तो आप उस टैक्स का जो एक्स्ट्रा इनपुट क्रेडिट है उसका रिफंड ले सकते हैं, मांग सकते हैं सरकार से।
और अगले श्रोता है महाराष्ट्र जलगांव से निसार जी। निसार जी आपका सवाल क्या है?
हेलो,
आपका सवाल क्या है निसार जी, सवाल पूछें।
हाँ मेरा सवाल है मैडम कि आप मिनिमम हम कितने प्रकाश का बिल मांग सकते हैं?
आप जो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है उसका भी बिल मांग सकते हैं। आप जो सामान परचेज करते हैं, अगर आप 1 रुपए का 2 रुपए का जो भी करते हैं, अगर आप बिल मांगते हैं तो मांग सकते हैं,
बिल्कुल आपको पूरा,
लेकिन हाँ आपको हक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते मांगते हैं, वह व्यापारी 200 रुपए तक का बिल वो नहीं करेगा अपने आप से, वो एक शाम को या उसका एक सारे उनके सेल का एक बिल बना सकता है, लेकिन आप अगर मांगेंगे तो वो बिल आपको देगा।
आप जागरूक उपभोक्ता बनिए, अपना जो आपने खरीदारी की है उससे जरूर मांगे बिल। अगला सवाल है दिल्ली से अरुण जी का। अरुण जी आपका सवाल पूछें अपना।
हाँ जी, गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग, जल्दी से सवाल।
क्वेश्चन था कि जैसे ये इंडिया में जो इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम और कैनेडा का अकाउंटिंग सिस्टम सेम है, डबल बुक कीपिंग सिस्टम, और ये 1991 में जब कैनेडा में अप्लाई हुआ था जीएसटी तो वहां नेगेटिव चला गया था, ये तो इंडिया में पॉजिटिव जाएगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा, ये मैं किस बेस पे बोलूं?
जैन जी आप बताएं इनकी जो आशंका है।
देखिए आशंका निर्मूल है, एक तो कनाडा की और हमारी परिस्थितियां एकदम भिन्न हैं, वहां नेगेटिव गया यहां पॉजिटिव जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीज को हम देखते हैं, हम तो देखिए प्रैक्टिकली जुड़े हैं व्यापार वर्ग से, तो नेगेटिव जाने का तो कोई कारण नहीं लगता। जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी एक प्रश्न हो सकता है, मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें जो अभी आज अकाउंटिंग के बाहर हैं वो सब अकाउंटिंग के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो रियल जीडीपी की जो स्थिति है वो हमें पता लगेगी। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी जीडीपी का साइज जितनी हम दिखा रहे हैं उससे कम से कम 2 गुना 3 गुना शायद हो सकता है, ऐसी हमारी अप्रिहेंशन रहती है हमेशा, क्योंकि इतनी अनअकाउंटेड इकोनॉमी है।
तो कहीं ना कहीं रोजगार में भी मुझे लगता है कि दरवाजे खोलेंगे रोजगार
के, तो बहुत दरवाजे हैं, जीएसटी इटसेल्फ में बहुत दरवाजे हैं, हमारे पास तो लाइन लगी है लोगों की कि यहाँ भी जीएसटी जीएसटी जीएसटी।
तो आप घबराए ना, बस हमारा कार्यक्रम अब यही है, कर सुधारों की दिशा में इस क्रांतिकारी बदलाव का 1 जुलाई से देश में क्या असर पड़ेगा इस बारे में हम अगले किसी कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपसे अनुमति लेने का समय है। अपने सभी श्रोताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए श्री संजीव श्रीवास्तव जी और श्री विनोद जैन जी, आप दोनों का शुक्रिया। कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें सुझाव भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR energy talks@gmail.com। www.pbsradio.com। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यंग समाप्त हुआ। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।